शांति। प्रातः क्लास है 14 अगस्त 1968। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाने वाला भी रूहानी और बच्चे भी रूहानी। यहां सभी बैठे हुए हैं, कोई तो देह अभिमानी होंगे, कोई देही अभिमानी होंगे, कोई सेकंड में देही अभिमानी और कोई सेकंड में देह अभिमानी होते रहेंगे। ऐसे तो कोई कह न सके कि हम सारा समय देही अभिमानी होकर के बैठे हैं। नहीं, बाप समझाते हैं कोई समय देह अभिमानी और कोई समय देही अभिमानी होंगे। कैसे पता चले कि कब देही अभिमानी होकर बैठे हैं और कब देही अभिमानी होकर बैठे हैं? अभी बच्चे ये तो जानते हैं, हम आत्माएं अपने शरीर को छोड़ जाएंगे अपने घर, और जाना है बहुत खुशी से। सारा दिन चिंतन ही ये करते हैं हम शांति धाम में जावें, क्योंकि बाप ने रास्ता तो बताया है। और कोई भी कभी इस विचार से नहीं बैठता है। ये शिक्षा किसको मिलती ही नहीं है, ख्याल भी नहीं होगा। तुम बच्चे समझते हो ये दुखधाम है, अभी बाप सुखधाम जाने का रास्ता बताते हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना ही संपूर्ण बने यथा योग शांति धाम चले जाएंगे। यथा योग शांति धाम चले जाएंगे। यथा योग शांति धाम में जाना क्या होता है? योग जैसा जैसा होगा, ऊंची कोटि का होगा, नीची कोटि का होगा, उतना ही शांति धाम में ऊंची स्टेज में जाएंगे। क्योंकि याद लगन को कहा जाता है, और लगाव में जो जितना तीव्र होगा वो बाप के उतने ही नजदीक जाकर बैठेगा। बाप तो है ऊंचे से ऊंचे, और बाप बुद्धिमानों की बुद्धि है। तो जो बच्चे हैं नंबर वार यथा योग लगाने वाले, वो भी बाप के नजदीक उतना ही पहुंचते हैं जितना याद करते हैं तीव्रता से। और आत्माएं जो जड़त्वमयी बुद्धि वाली है वो तो बहुत नीचे रहती है। तो मुक्ति धाम यथा योग जाना है। जिसके लिए ही मनुष्य रुक गुरु करते हैं, परंतु मनुष्यों को बिल्कुल ही पता नहीं है कि मुक्ति, जीवन मुक्ति क्या चीज है। वो तो समझते हैं मुक्ति हो जाएगी माना सदैव के लिए आत्मा मुक्त हो जाएगी संसार रूपी चक्र से, परंतु ऐसे तो है नहीं। इस चक्र में तो सभी को आना पड़ता है। भगवान के लिए भी लिख देते हैं कि कल्प कल्प आते हैं, युग युग में आते हैं, और खुद के लिए कहते हैं हम मुक्त हो जावे, मोक्ष को पा लेवे। ऐसा कैसे हो सकता कि भगवान बंधन में बंधा रहे और आत्माएं मुक्त हो जाए सदाकाल के लिए। वास्तव में हर आत्मा यथा योग मुक्ति की स्टेज को पाती है, और जितनी ही मुक्ति की स्टेज को पाती है जीवन मुक्ति भी पाती है। जीवन में रहते हुए भी दुख दर्दों से मुक्त है। तो दुनिया में कोई नहीं जानते हैं, क्योंकि ये नई बात है। तुम बच्चे समझते हो कि अभी हमको घर जाना है, बाप कहते हैं पवित्र बनो आदि की यात्रा से। तुम पहले पहले जब आए थे शिष्टाचारी दुनिया में आए थे तो तुम सब सतो प्रधान थे। आत्मा ही सतो प्रधान थी, कोई के साथ कनेक्शन भी बाद में होगा, और जब कनेक्शन होगा तो जिसके साथ कनेक्शन होगा वैसा संग का रंग लगेगा। जब गर्भ में जावेंगे तो भी संबंध में आवेंगे। तुम जानते हो अभी हमारा ये अंतिम जन्म है, अब हम और कोई गर्भ में जाने वाले नहीं हैं। हमको तो वापस घर जाना है, परंतु आत्मा पवित्र बने बिगर है कोई भी वापस नहीं जा सकता। ऐसे ऐसे अपने अंदर में बातें करनी होती हैं, क्योंकि बाप का फरमान है उठते बैठते घूमते फिरते बुद्धि में ये ख्यालात रहे कि जब हम इस दुनिया में आए थे तो सतो प्रधान थे, अभी फिर हमको सतो प्रधान बन करके ही वापस जाना है, और सतो प्रधान बनना है बाप की याद से। क्योंकि एक बाप ही है जो सदा सत्य है, सदा कल्याणकारी है। इस दुनिया में आने के बाद और जो भी आत्माओं के हम संसर्ग संपर्क में आए, कनेक्शन में आए, वो तो बाप समान उतनी सतो प्रधान नहीं हो सकती। तो बाप की याद से हम सतो प्रधान बनते हैं। बाप ही पतितों को पावन बनाने वाला है, और तो साप संग के रंग में आ जाते हैं। जो खुद ही संग के रंग में आ जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, वो हमको पतित पावन कैसे बनावेंगे। बाप बच्चों को युक्ति बताते हैं कि तुम पावन कैसे हो सकेंगे। क्योंकि बाप ही सारी सृष्टि के आदिमध्यंत को जानते हैं और कोई भी आत्मा ऐसी नहीं है जो सारी सृष्टि के आदिमध्यंत को जानता हो। सात जन्म मरण के चक्र में आते रहते हैं, भूलते रहते हैं और कोई भी अथॉरिटी नहीं है सृष्टि के आदिमध्यंत को जानने वाली। बाप ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तो सारी सृष्टि के आदिमध्यंत को जानते हैं। ये भक्ति कहां तक चलती है वो भी बाप ने समझाया है। भक्ति कहां तक चलती है? हाँ तो वो आधा कल्प भी कहां तक है? कलयुग तो अब भगवान आ गया, कलयुग का अंत तो हुआ, लेकिन अभी भी भक्ति कहां तक चलेगी?
आपके पहचान से सब
तो पहचान तो लिया, लेकिन भक्ति तो चल भी रही है और ज्यादा बढ़ रही है। भक्ति कम हो रही है या भक्ति और ज्यादा बढ़ती ही जा रही है? बढ़ती जा रही तो कहां तक चलेगी?
जब तक बात के ऊपर पूरा निश्चय
है,
पूरा निश्चय।
अच्छा, बाप के ऊपर पूरा निश्चय। अच्छा, एक कोई पूरा निश्चय नहीं हुआ होगा,
सिर्फ ये के लिए
है। तो उसकी भक्ति खत्म हो जानी चाहिए,
लेकिन सारी दुनिया तेरे बाने सर्व का भला।
भक्ति कहाँ तक चलती है वो भी बाप ने समझाया है। कब तक चलती है? जब तक अति न हो जाए तब तक अंत अंत नहीं हो सकता। कोई भी चीज का अंत तब होता है जब अति हो जाती है। इतना समय ज्ञान मार्ग, इतना समय भक्ति मार्ग चलता तो है, ये सारा ज्ञान अंदर में टपकना चाहिए, ऐसे ही टपकना चाहिए जैसे बाप की आत्मा में ज्ञान है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा में ज्ञान टपकना चाहिए। आत्मा शरीर द्वारा ज्ञान सुनती है और शरीर के ऑर्गन्स द्वारा ही सुनाती है। शरीर के बिगर तो आत्मा बोल भी नहीं सकती, सुन भी नहीं सकती। इसमें प्रेरणा अथवा आकाशवाणी आदि की बात नहीं होती है। जो कोई कहे कि हमको भगवान की प्रेरणा हुई, हमने सुना नहीं किसी से, लेकिन हमको भगवान ने डायरेक्ट प्रेरणा दे दी, या हमारे यहां कानों में आकाशवाणी आई, तो ऐसी कोई बात होती नहीं है। भगवान वाच है, मुख तो जरूर चाहिए। रथ ही चाहिए और रथ भी कोई घोड़े गधे का थोड़े ही लेंगे। क्यों? शास्त्रों में तो दिखाया हुआ है घोड़े गाड़ी वाली, घोड़ों की गाड़ी नहीं दिखाई है, चार घोड़े दिखाए हैं, उनके साथ रथ जुता हुआ है। बाप कहते हैं ये कोई घोड़े गधे की बात नहीं है, ये तो मन रूपी घोड़े हैं जो भक्ति मार्ग में दिखाए गए हैं। चार ऐसी सशक्त आत्माएं हैं चार धर्मों की, जिनके मन बड़ी तीव्र गति से कार्य करते हैं, तीव्र गति से दौड़ने वाले हैं, ऊंची स्टेज में भी तीव्र गति से दौड़ते हैं और नीची स्टेज में भी तीव्र गति से दौड़ते हैं। बाकी कोई गधे का रथ ले, घोड़े में आवे, ऐसी कोई बात है नहीं। हमको कोई गधे घोड़े को नहीं याद करना है। अभी तो हमको बाप को याद करते करते वापस घर जाना है। यहां तो हमको रहना ही नहीं है। दूसरा कोई मनुष्य ऐसे नहीं समझता है। तुम भी पहले समझते थे कि कलयुग 40,000 वर्ष का है, क्योंकि अज्ञान निधि में सोए पड़े थे। अभी बाप ने जगाया है। भक्ति मार्ग के शास्त्रों के कारण मनुष्य अज्ञान अंधेरे में घोर निद्रा में पड़े हुए हैं। तुम भी अज्ञान निद्रा में थे, अभी तुमको ज्ञान मिला है। अज्ञान कहा जाता है भक्ति को। भक्ति नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि बुद्धि भागती रहती है, बुद्धि को ठिकाना मिलता ही नहीं, बाप का परिचय ही नहीं मिलता। पक्का ठिकाना न मिलने की वजह से बुद्धि भटकती रहती है, तीर्थों में, ठिकानों में, गिरजाघर, मंदिर, गुरुद्वारों में। इसको कहा जाता है अज्ञान, अंधेरा। अंधेरे में भटकते हैं ना। और ये भक्ति रूपी अज्ञान भी आधा कल्प चलता है, आधा टाइम दिन और आधा टाइम रात। ये भी कोई नहीं समझते कि 2,500 वर्ष से हम मनुष्यों की बुद्धि भटकती चली आई है। कब से? जब से ये द्वैतवादी गुरु लोग, मनुष्य गुरु इस सृष्टि पर आए, तब से सब की बुद्धि भटकती रही। उससे पहले? उससे पहले भटकना नहीं था। सबकी बुद्धि एकाग्र थी। कहां? आत्मिक स्थिति में। आत्मिक स्थिति में एकाग्र होने को भटकना नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे दिन। फिर जब बुद्धि भटकने लगी, भागने लगी, ठोकरें खाने लगी, तो कहेंगे अज्ञान रूपी अंधेरा। अब बच्चों को ये ख्याल करना है कि हम अपनी उन्नति कैसे करें, ऊंच पद कैसे पावे, अपने घर जावे और फिर नई राजधानी में आकर के ऊंच मर्तबा पावे। इसके लिए है याद की यात्रा। और याद की यात्रा में परिपक्व होने के लिए अपन को आत्मा तो जरूर समझना है। देवान में रहेंगे तो याद ठहरेगी नहीं। जितना जितना आत्माभिमानी होने की पक्की प्रैक्टिस करेंगे, बाप की याद भी स्वतः ही आती रहेगी। हम सभी आत्माओं का बाप परमात्मा है, ये तो बहुत ही सहज है। परंतु मनुष्य पत्थर बुद्धि ऐसे हैं जो इतनी सहज बात को भी याद नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। तुम मुरली में भी चला सकते हो। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि। क्या मतलब है? 2500 वर्ष लिंग पत्थर को याद किया, पत्थर की मूर्तियों को याद किया, तो क्या बन गए? पत्थर बुद्धि बन गए। आयरन एज्ड और गोल्डन एज्ड क्यों कहा जाता है? आयरन बहुत सख्त होता है और उसकी कीमत भी बहुत कम होती है, और गोल्डन, गोल्ड की कीमत बहुत होती है और मोल्ड भी होता है। मोल्ड होगा लेकिन टूटेगा? टूटेगा नहीं। कोई कोई ऐसे होते हैं थोड़ा सा उनके संस्कारों को मोड़ने की कोशिश की जाए तो ज्ञान में से टूट पड़ते हैं। बाप ने समझाया है, इस समय सभी तमोप्रधान बुद्धि बन गए, क्योंकि अभी भ्रष्टाचारी नाम तो है ना। भ्रष्ट आचरण वाले हैं, ये रावण राज्य है, इसलिए तुम्हारी बुद्धि भ्रष्टाचारी बन गई है। मनुष्य समझते हैं जो विकार में नहीं जाते हैं वो पावन है। ये क्या बात है? जो विकार में नहीं जाते हैं वो पावन नहीं है? सन्यासी विकार में नहीं जाते हैं तो उन्हें पवित्र नहीं कहेंगे
है? अहंकार है,
अहंकार है। अरे वो विकार में नहीं जाते तो पवित्र हुए ना। हाँ, विकार में भल नहीं जाते हैं लेकिन बुद्धि तो विकृत बनी ही रहती है। मन बुद्धि विपरीत कार्यों में लगती है या नहीं लगती है? लगती है। सन्यासियों का मिसाल दिया जाता है, बाप समझाते हैं जो विकार में नहीं जाते हैं सन्यासी वो अल्पकाल के लिए पावन बनते हैं। क्या? थोड़े समय के लिए शमशानी वैराग आ जाता है, विकारों को छोड़ देते हैं, वो सदाकाल के पावन देवताएं नहीं हो सकते। दुनिया तो फिर भी पतित ही बनी रहती है ना। पतित दुनिया में सदाकाल के लिए पावन कहां से आवेंगे? पावन दुनिया तो होती ही है सत्ययुग। पतित दुनिया में सत्ययुग जैसा पावन तो कोई नहीं हो सकता। सत्ययुग में कैसा पावन होता है? और इस पतित दुनिया में जो सन्यासी पावन बनते हैं वो कैसे पावन बनते हैं? क्या अंतर है? हाँ, सत्ययुग में जो देवताएं होते हैं वो प्रवृत्ति में भी रहते हैं, मेल फीमेल साथ साथ जीवन में रहते भी हैं और साथ साथ रहते हुए भी पतित नहीं बनते, और थोड़े समय के लिए भी नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए पावन बनकर रहते हैं। और इस पतित दुनिया में बल सन्यासी बनते हैं फिर भी अगला जन्म पतित पने से ही होगा। वहां तो रावण राज्य विकार ही नहीं होता, यहां तो रावण राज्य है। तो चक्कर लगाते घूमते फिरते बुद्धि में ये बातें चिंतन में चलनी चाहिए, क्योंकि बाबा में भी ज्ञान है ना, ज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान टपकता होगा। और तुम भी ज्ञान सागर से निकली हुई नदियां हो तो नदियों का जल रुका रहता है क्या है? नदियों का जल भी बहता होना चाहिए। हाँ, ये कहेंगे एवर प्योर तो सागर ही है। 14:8-68 की वाणी का दूसरा पेज, तुम कोई एवर सागर नहीं हो, क्योंकि तुम बच्चे तो पढ़ते हो, वास्तव में नदियां आदि पतित पावनी है वो भी बात नहीं है, वो तो नदियां आदि कहने से गंगा यमुना आदि कह देते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो कि हम तो सभी भाई भाई हैं, हम आत्माओं को बाप पढ़ा रहे हैं और भाई भाई का अर्थ भी समझते हो, वो तो अर्थ को नहीं समझते हैं। क्या अर्थ है कि जब भाई भाई कहा जाता है तो एक बाप के बच्चे होना चाहिए, और एक बाप के जो बच्चे हैं वो भी सब आत्मिक स्थिति वाले होने चाहिए, कोई में देवान आ जाए प्रभावित होने लगे वो बात भी नहीं। तुम सभी का बाप एक है, अभी हम आत्माओं को वापस अपने घर जाना है और घर भी एक ही है, वो घर है ब्रह्मांड। क्या नाम दिया? ब्रह्मांड नाम क्यों दिया है? ब्रह्मा ब्रह्मा और अंड है। हाँ, ब्रह्मा का अंड, जैसे यहां हम इस सृष्टि पर हैं, ब्राह्मण बने हैं तो आए कहां से? हैं? ब्रह्मा से ही तो आए। तो ब्रह्मा चैतन्य बाप है या बाप के रहने का स्थान है?
रहने का स्थान
कहेंगे ब्रह्मांड, जहां अंडे मिसाल हम सभी आत्माएं रहती हैं, उसको निराकारी दुनिया भी कहते हैं, जहां से आत्माएं आकर शरीर रूपी तख्त पर विराजमान होती हैं, और ये बहुत छोटी आत्मा है। अगर कोई को साक्षात्कार भी हो जाए तो भी कोई समझ नहीं सकता, बहुत सूक्ष्म बातें हैं। आत्मा निकलती है जरूर कोई चीज है, कहां से निकलती है? अरे शरीर में से आत्मा निकल जाती है, शरीर मुर्दा हो जाता है, पहले चलायमान था, पर जब आत्मा निकल गई तो शरीर मुर्दा हो गया, निश्चेष्ट हो गया, तो साबित हुआ कि जरूर शरीर में से कोई शक्ति कोई चीज निकल गई। इतनी सूक्ष्म है कि जब आत्मा शरीर से निकलती है तो कोई को दिखाई भी नहीं पड़ती है, बिंदी मिसल है, کب کہتے ہیں ٹپر سے نکل گئی، کب کہتے ہیں ان کی آنکھوں سے نکل گئی، کوئی کا شریر چھوڑتے سمے مکھ کھل جاتا ہے تو سمجھتے ہیں مکھ سے نکل گئی. اب آتما کیسے آتی ہے کیسے جاتی ہے یہ بات تو بابا نے بتائی نہیں ہے. بتائیے ہے کہ شریر میں آتما کہاں سے آتی ہے اور کہاں سے جاتی ہے، بابا نے بتایا گیا؟ ہاں یہ کہیں گے آتما شریر کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے. تو جب آتما شریر کو چھوڑ کر کے چلی جاتی ہے تو شریر جڑ ہو جاتا ہے، پھر ضرور دوسرے جڑ شریر میں جا کر پرویش کرتی ہے. کہاں؟ گرو پنڈ میں. جو پنڈ تیار ہوتا ہے وہ جڑ ہوتا ہے یا چیتنیہ ہوتا ہے؟ جڑ پنڈ ہوتا ہے، اس میں پرویش کرتی ہے. جب پرویش کرتی ہے تو چرپر ہوتی ہے. کس کو پتا چلتا ہے پہلے؟ ماں. تو ماتا کو پتا چلتا ہے. تو کہیں گے واستو میں منشیہ تو مٹی کا پتلا ہے، آتما کو تھوڑا ہی پتلا کہیں گے. تو کہیں گے یہ گیان ہے، چلتے پھرتے بدھی میں یہ گیان ٹپکنا چاہیے. اسٹوڈینٹ کی بدھی میں سارا گیان ساری پڑھائی رہتی ہے نا، تمہارا بھی سارا دن پڑھائی کا ہی خیالات چلنا چاہیے. جو اچھے اچھے اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں انہوں کے ہاتھ میں سدیو کوئی نہ کوئی کیا رہے گا، کتاب رہے گی، کاپی رہے گی، پڑھتے رہیں گے. باپ کہتے ہیں تمہارا بھی یہ انتم جنم ہے، سارا چکر لگا کر کے ابھی انت میں آئے ہو، تو بدھی میں یہی باتیں سمرن کرنا چاہیے، دھارنا کر کے پھر اوروں کو سنانا چاہیے. کوئی کو تو یہ باتیں دھارن ہی نہیں ہوتی ہیں. کیوں؟ کوئی کو دھارن ہوتی ہے اور کوئی کو دھارن نہیں ہوتی ہے، اس کا کارن کیا ہے؟ نہیں، یہ بات بھی صحیح ہے. برہمنوں کو یہ بات کا انبھو ہے کہ جب وکاری بنتے ہیں، جن دنوں جیون زیادہ وکاری ہو جاتا ہے ان دنوں بدھی میں سے گیان بھاگ جاتا ہے، اور جیسے جیسے ہم نروکاری بنتے ہیں ویسے ویسے گیان بدھی میں ٹپکتا رہتا ہے. مانے گیان بدھی میں ٹھہرے یا نہ ٹھہرے اس کا کارن کیا ہوا؟ پیورٹی. جو پوتر ہے سونے کی بدھی ہوگی تو اس میں گیان ٹھہرے گا، اور اپوتر بدھی ہوگی تو گیان بدھی میں ٹھہرے گا نہیں. اسکول میں بھی نمبر وار اسٹوڈینٹ تو ہوتے ہی ہیں، ان اسکولوں میں بھی سبجیکٹس بہت ہوتی ہیں، اور یہاں تو ایک ہی سبجیکٹ ہے، ایک ہی اہم آبجیکٹ ہے. وہاں تو اہم آبجیکٹ بھی ڈھیر کی ڈھیر ہوتی ہے، وکیل بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، یہ بننا ہے، وہ بننا ہے. یہاں کیا ہے؟ یہاں تو نرسے نارائن بننا ہے، منشی سے دیوتا بننا ہے، یہی پڑھائی کا چنتن چلتا رہے. ایسے نہیں کہ پڑھائی بھول جاوے اور پڑھائی کی جگہ اور دنیا بھی خیالات چلتے رہے، کیونکہ جو دنیاوی دھندے دہوڑی والا ہوگا اس کی بدھی میں کیا چلے گا؟ دنیاوی دھندے دہوڑی کی باتیں ہی چلتی رہیں گی. جو اسٹوڈینٹ ہوگا تو اسٹوڈینٹ دھندے دہوڑی تو کرتے نہیں ہیں، ان کی بدھی میں کیا چلے گا؟ पढ़ाई की बातें ही चलेंगी। तुम बच्चों को भी अपनी पढ़ाई में रहना है। कल एक निमंत्रण पत्र आया था, इंटरनेशनल योग कॉन्वेंस पर। तुम उन्हों को लिख सकते हो, तुम्हारा ये है हठ योग, तुम्हारे इस हठ योग की एम ऑब्जेक्ट क्या है सो बताओ, इससे क्या फायदा होता है। हम तो राजयोग सीख रहे हैं। परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, वो रचयिता हमको अपना और अपनी रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान सुनाते हैं। अभी हमको वापस जाना है तो बाप कहते हैं मनमना भव, ये हमारा मंत्र है। हम बाप को और बाप के द्वारा जो वर्षा मिलता है उसको याद करते हैं। तुम ये जो हठ योग आदि करते हो अथवा करते आए हो, उसकी एम ऑब्जेक्ट क्या है। हमने अपनी बात तो आपको बताई कि हम ये सीख रहे हैं, परंतु आप बताओ कि तुम्हारे इन हठ योग से क्या मिलता है। ऐसे ऐसे उनको रिस्पॉन्ड में नटसेल में लिखना चाहिए। तुम्हारे पास निमंत्रण तो बहुत आते हैं। आल रिलीजियन कॉन्फ्रेंस का तुमको निमंत्रण आवे, तुम बोलो आपका एम ऑब्जेक्ट क्या है। हम तो ये बात सीख रहे हैं, तुम अपना बताओ, क्योंकि ये जो राजयोग तुम सीख रहे हो इसका तो किसी को भी पता नहीं है। तो बोलो हम तो ये है पढ़ रहे हैं और हमको पढ़ाने वाला भगवान एक है, हम सभी ब्रदर्स हैं, हम अपन को आत्मा समझते हैं। बेहद का बाप हमको कहते हैं अपन को आत्मा समझ, मामी कम याद करो। ऐसे करेंगे तो तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। ऐसे ऐसे उनको लिखना चाहिए, लिखत बहुत अच्छी छपा करके रख दो, फिर जहां जहां कॉन्फ्रेंस आदि हो वहां भेज दो। तुम सभी से पूछ सकते हो, हम तो ये सीख रहे हैं, तो मनुष्यों को पता पड़े, समझेंगे ये तो बहुत अच्छे अच्छे फायदे की बात सीखते हैं। हम इस राजयोग से डबल सिरताज, राजाओं का राजा, विश्व का मालिक बनते हैं। हर 5000 वर्ष बाद हम देवता बनते हैं, फिर मनुष्य बनते हैं। पहले क्या बनते हैं? पहले ब्राह्मण बनते हैं। जरूर कहेंगे ब्रह्मा की औलाद सो ब्राह्मण, फिर जो पक्के ब्राह्मण बनते हैं सो देवता बनते हैं। क्यों? जो ब्राह्मण है पढ़ रहे हैं, ब्रह्मा के ही तो बच्चे हैं। तो जो ब्रह्मा के बच्चे हैं वो देवता क्यों नहीं?
ऊपर नीचे
नहीं, ब्रह्मा खुद ही देवता नहीं है। जो ब्रह्मा के बच्चे हैं उनमें भी देवता वह बनते हैं जो संपूर्ण ब्राह्मण बनते हैं। चंद्रमा कभी संपूर्ण होता है और कभी अपूर्ण होता है। तो जब ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा ही अपूर्ण है तो बच्चे भी अपूर्ण ही रहेंगे। चंद्रमा संपूर्ण होता है तो बच्चे भी संपूर्ण बनते हैं। इसलिए कहा जाता है ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा का जब दिन होता है तो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा संपूर्ण होगा या अधूरा होगा? संपूर्ण ही होगा। संपूर्ण कैसे बनता है? बाप को याद करने से संपूर्ण बनते हैं और औरों को याद करने से अपूर्ण बनते हैं। ऐसे ऐसे लिखना चाहिए, ऐसे लिखत बहुत अच्छी छपा करके रखो। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करके फर्स्ट क्लास लिखत बनानी चाहिए। हम तो राजयोग सीख रहे हैं, तो क्यों नहीं मनुष्यों को बताएं कि हम क्या सीख रहे हैं? इस राजयोग में क्या राज भरा हुआ है जो हम मनुष्य से देवता बनते हैं? तुमसे कोई उद्देश्य पूछते हैं, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? तो तुम्हारा छपा हुआ रखा हो, हमारा एम ऑब्जेक्ट ये है, नर से नारायण बनना, नारी से लक्ष्मी। फिर उनसे भी पूछो, आप अपना एम ऑब्जेक्ट बताओ, आपके इस हठ योग से क्या प्राप्ति होगी? तुम तो फट से कह देते हो, हमको विश्व की बादशाही चाहिए। जो विश्व की बादशाही और कोई को मिली नहीं है, राजयोग से ही विश्व की बादशाही मिलती है। ऐसे ऐसे लिखने से उनको भी टेम्पटेशन होगी। इसमें कोई हठ योग व शास्त्रार्थ आदि करने की भी बात नहीं है। तुम कोई से भी शास्त्रार्थ नहीं करेंगे। 1468 की वाणी का तीसरा पेज। उन हठ योगियों को, शास्त्रवादियों को शास्त्रार्थ का भी कितना अहंकार रहता है। क्यों? वो अपन को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं। वास्तव में वो तो पुजारी हैं, जो खुद ही पुजारी हैं उनको अथॉरिटी कैसे कहेंगे? अथॉरिटी तो पूज्य को कहा जाता है, पुजारी को क्या कहेंगे? जो पुजारी होते हैं वो तो होते ही हैं पुरानी दुनिया में, द्वापर कलियुग को पुरानी दुनिया कहेंगे। तो ये क्लियर करके लिखना चाहिए हम क्या सीखते हैं। ब्रह्मा कुमारी का नाम तो दुनिया में बहुत मशहूर हो गया है। तुम पूछ सकते हो, तुम्हारे इस हठयोग का एम ऑब्जेक्ट क्या है? बोलो। योग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हठयोग और दूसरा होता है सहज राजयोग। और वो सहज राजयोग तो कोई भी मनुष्य सिखला ही नहीं सकता, क्योंकि मुश्किल को सहज करने वाला एक भगवान ही गाया हुआ है। और तो सब मुश्किल को बढ़ाने वाले हैं। राजयोग तो परमपिता परमात्मा ही सिखाते हैं। बाकी जो तुम्हारे ये अनेक प्रकार के योग हैं, वो सब योग मनुष्यों की मत पर हैं। वहां देवताओं को तो किसी की मत लेने की दरकार ही नहीं होती है। देवताओं का कोई गुरु होता ही नहीं है। शास्त्रों में उन्होंने देवताओं का गुरु दिखाई दिया है। कौन है? बृहस्पति। अब बृहस्पति ग्रह है या सूर्य है? है, वो तो ग्रह है। जो ग्रह होते हैं वो स्वयं प्रकाशित होते हैं या सूर्य की रोशनी से प्रकाशित होते हैं? जिसमें खुद ही रोशनी नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो दूसरों को ज्ञान कैसे देगा? تم تو باپ سے ورثہ لیتے ہو. تو وہ دیوتائیں ہیں جو دیوی گن والے ہوتے ہیں, ہیں تو دو باہوں والے منشیہ, پرنتو ان میں دیوی گن والے ہیں اس لیے دیوتا کہا جاتا ہے. اور جن میں دیوی گن نہیں ہوتے ہیں, آسری گن ہوتے ہیں, ان کو کہا جاتا ہے آسر. انہوں نے تو دیوتاؤں کو اور آسروں کو ساتھ ساتھ دکھائی دیا ہے. شاستروں میں کیا دکھایا ہے؟ دیوتاؤں اور آسروں کی لڑائی لگی. اب دیوتائیں ہوتے ہیں ستیوگ تریتا میں, آسر ہوتے ہیں دواپر کلیوگ میں, تو لڑائی کہاں کی دکھا دی؟ اس سنگم یوگ میں جب بھگوان باپ آتے ہیں تو جو باپ کے بچے بنتے ہیں وہ ہیں دیوتائیں, اور جو نہیں بنتے ہیں وہ ہیں آسر. ہاں یہ کہیں گے کہ باپ جب آتے ہیں تو کوئی مقرر رتھ کا آدھار لیتے ہیں. یہ بھی تم بچے جانتے ہو کہ دیوتاؤں کا بھی راج تھا, پھر وہ کہاں گیا, 84 جنم کیسے لیے, اس کے لیے سیڑھی پر سمجھانا چاہیے. یہ سیڑھی کا چتر بہت اچھا ہے. جو تمہارے دل میں ہے وہ تمہاری سیڑھی میں ہے. جو سیڑھی کا گیان کسی کو سمجھائے نہیں سکتے ہیں ان کو جٹ کہیں گے. صرف سیڑھی کا گیان. اور چتروں کی بات کیوں نہیں بتائی ہے؟ ہاں کہ جو بھارت واسی ہوتے ہیں وہی سیڑھی 84 کا چکر پورا چڑھتے ہیں اور وہی اترتے ہیں. تو چڑھاؤ اتار کا ان کو پتا رہتا ہے اور دوسروں کو پتا ہوتا ہی نہیں. پورے 84 جنم لیتے ہی نہیں. تو کہیں گے جٹ بدھی. جٹ لوگ کیا پڑھیں گے؟ سارا مدار پڑھائی پر ہے. پڑھائی ہے سورس آف انکم. یہ سب سے اونچی پڑھائی ہے, دی بیسٹ ہے. کیوں سب سے اونچی پڑھائی؟ کیوں؟ کیونکہ پڑھانے والا اونچتے اونچ بھگوان ہے. دنیا تو جانتی ہی نہیں ہے کہ دی بیسٹ کون سی پڑھائی ہے. اس پڑھائی سے منشیہ دیوتا ڈبل کراؤن بن جاتے ہیں. ابھی تم ڈبل سر تاجدھاری بننے کی پرشارتھ کر رہے ہو. پڑھائی تو ایک ہی ہے, اور ایک ہی پڑھائی سے راجدھانی استھاپن ہو جاتی ہے. راجا بھی بنتے ہیں تو رنگ بھی بنتے ہیں. باقی یہ کہیں گے وہاں دکھ کی بات نہیں ہے. مرتے تو ہیں پرنتو خوشی خوشی مرتے ہیں, خوشی خوشی شریر چھوڑتے ہیں. یہاں تو دیکھو کتنے انیک پرکار کے دکھ ہیں. پھیمن پڑتا ہے, بیماریاں آتی ہیں, اناج نہیں ملتا ہے, فلٹس آ جاتا ہے. بل لکھپتی ہیں, سنیاسی ہیں, وہ بھی تو بھرشٹاچار سے ہی پیدا ہوتے ہیں. اور بیماریاں روگ تو سبھی کو ہوتے ہیں. آج کوئی نے دھکا کھایا, کوئی کو مچھر نے کاٹا, پھوڑا بن گیا, اس کو بھی کیا کہیں گے؟ دکھی ہی تو ہے نا. اس کو کہیں گے ہی رو رو نہ رکھے. پھر بھی کہتے رہتے ہیں فلانا سورگ میں پدھارا. ارے سورگ تو ابھی آنے والا ہے, سورگ کہاں سے پدھارا؟ اس دنیا میں کہیں سورگ ہے جو سورگ پدھارا؟ سورگ میں مریں گے تو سورگ پدھاریں گے, نرک میں مریں گے तो नरक पधारेंगे। फिर स्वर्ग कैसे पधारा, ये भक्ति मार्ग में कहां से कहा बताई है स्वर्ग पधारा कैसे है। हाँ, जो दीचे जी देहभान से मरते हैं वो अपने को स्वर्ग में स्वस्थिति में पहले अनुभव करते हैं और स्वस्थिति के आधार पर सुख में अनुभव करते हैं, कोई भी प्रकार का उनको दुख नहीं हो सकता। तो ये बातें किसी को भी समझाना बहुत सहज है। अभी बाबा ने ऐसे ऐसे प्रस्ताव दिया है, लिखना तो बच्चों का काम है, बच्चों को खुद धारणा होगी तो लिखेंगे। मुख्य बात बच्चों को समझाते हैं कि अपन को आत्मा समझो, क्योंकि अभी आत्माओं के लोक में वापस जाना है। जहां जाना होता है वैसी स्थिति को धारण करना होता है। हम सतो प्रधान थे तो खुशी का पारावार नहीं था, हम विश्व के मालिक थे, अभी फिर हम तमो प्रधान बने हैं। हैं तो सहज पॉइंट्स, और बाबा तो ये पॉइंट समझाते ही रहते हैं। अभी कलयुग है, पहले सतयुग था, 84 जन्म सतयुग वाले ही लेते होंगे। ये बैठ करके अच्छी रीति समझाना है कि सब 84 के चक्र में नहीं आते हैं। कौन आते हैं? जो सतयुग में आदि में आए थे वो ही 84 के चक्र में आते हैं। नहीं मानते हैं तो समझा जाता है ये हमारे कुल का नहीं है। पढ़ाई में तुम बच्चों को दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाना है, पीछे थोड़ा ही हटना है। दैवी गुणों की बदली आसुरी गुण धारण करना, इसको क्या कहेंगे, आगे बढ़ना या पीछे हटना है? कहेंगे पीछे हट गया। बाप कहते हैं विकारों को उड़ाते रहो, दैवी गुण धारण करते रहो, बहुत हल्का फुल्का रहना है। देहभान के कारण ही भारीपन आता है, ये शरीर छी छी है, इनको छोड़ना है, क्योंकि हमको तो अब घर जाना है वापस। बाप को याद नहीं करेंगे तो हम गुलगुल बनेंगे नहीं, बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। आगे चलकर के तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे, बहुत पूछते रहेंगे तुमसे, तुमने क्या सर्विस की है, तुम कब कोर्ट में नहीं गए हो। बाबा ने तो सभी अनुभव किया है, देखा है कैसे ये लोग चोरों को पकड़ते हैं, कैसे चलते हैं, तो वहां भी बाबा तुमको साक्षात्कार कराते रहेंगे। सजाएं खा करके फिर पाई पैसे का पद पाए लेंगे। टीचर को तो रहम आता है ना स्टूडेंट्स पर, ये नापास हो जाएगा, ये बाप को याद करने की सब्जेक्ट सबसे अच्छी है जिससे पाप कटते जावेंगे। बाबा हमको पढ़ाते हैं ये बात, स्मरण करते करते चक्कर लगाते रहना चाहिए। स्टूडेंट टीचर को याद भी करते हैं और पढ़ाई भी बुद्धि में रहती है, तो पढ़ाई भी रहना चाहिए बुद्धि में और टीचर की क्या याद भी रहनी चाहिए। टीचर से योग तो जरूर रहेगा, बाप हमको पढ़ाते हैं ये बुद्धि में भी रहना, बुद्धि में रहना चाहिए। हम सब भाइयों का एक ही टीचर है और वो सुप्रीम टीचर है, आगे चल करके बहुतों को मालूम पड़ेगा। धुन धुनी लग जावेगी, अहो प्रभु तेरी लीला, महिमा करते करते मरेंगे। परंतु महिमा करते करते तो मरेंगे, परंतु पाए नहीं सकेंगे। देह अभिमान में आने से ही उल्टे कर्म करते हैं। बाप कहते हैं देही अभिमानी होने से अच्छे कर्म करेंगे। तुम्हारी भी अब है तो वानप्रस्थ अवस्था, वापस जाना ही पड़ेगा, हिसाब किताब चुक तू करना, सबको वापस जाना है। कोई वापस जाना चाहे अथवा न चाहे, लेकिन जाना तो जरूर पड़ेगा। ये क्या बात है? ऐसा कोई होगा जो वापस न जाना चाहे इस दुनिया से? नहीं, जाना पड़े। लेकिन कोई ऐसा हो कि जो इस दुनिया को, इस दुनिया में अच्छा समझता हो अपने को, न जाना चाहे? है? अरे किसी को यही अच्छा लगता है तो क्यों जाना चाहेगा?
है?
नाली का कीड़ा होता है, उसे नाली में से निकाल के बाहर साफ सुथरी जगह पर रख दो, वो वहां रहना चाहेगा? है? नाली से बाहर जाना चाहेगा? नहीं। तो फिर कोई न जाना चाहे? दस करोड़ देवता ही, देव आत्माओं के अलावा जितनी भी देव आत्माएं होती हैं, वो सब इस दुनिया में आकर के गुमूत का सुख भोगती है या देवताई सुख भी भोगती है? गंदा सुखी ही तो भोगती है। तो जिनके जन्म जन्मांतर के संस्कार पड़े हुए हैं कल्प कल्पांतर के गंदगी का सुख भोगने के, वो वापस जाना चाहेंगे? उनको कोई कहे कि सुखधाम जावेंगे तो शांति धाम आवेंगे, इसलिए चलो जल्दी जल्दी सुखधाम। जो पहले पहले सुखधाम जावेंगे वो पहले पहले, जो मुक्ति धाम पहले जावेंगे वो पहले पहले सुखधाम में भी आवेंगे, चलो जल्दी मुक्ति धाम, तो वो जाना चाहेंगे? सन्यासी क्या कहते हैं? स्वर्ग के सुख कागविष्ठा समान, तो जाना ही नहीं चाहते। फिर भी भले जाना चाहे या न चाहे, वापस तो जाना ही पड़ेगा। ओम शांति।